हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहाँ पर केवल उन्हीं बच्चों को लिया जाता था जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, जिनके अंदर कुछ अलग था, या फिर वे बच्चे जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हार चुके थे। ऐसे लोगों को मोटिवेट करके वहाँ लाया जाता था और उन्हें दोबारा जीने लायक बनाया जाता था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर आकांक्षा की आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे मेंशन में घूम घूम कर उसने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया था। वहीं नैना ओबेरॉय और साथ ही साथ ईशान भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज उन लोगों को भी समाज में काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिला था। इतना ही नहीं, एक पार्टी नेता ने तो नैना ओबेरॉय को टिकट देने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि इस वक्त पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था नैना ओबेरॉय का नाम। इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर नैना उनकी पार्टी में आ जाती हैं तो उनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि उस वक्त पूरे देश की सहानुभूति नैना ओबेरॉय के साथ थी। इसलिए जैसे ही उन्हें टिकट दिया गया तो नैना की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुद को अब तक सिर्फ एक बिजनेस वूमन तक ही सीमित रखना चाहती थीं, लेकिन इस तरह का ऑफर मिलने के बाद तो उनकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ईशान ने घूमते हुए सरगोशी में कहा था, देखा तुमने, इतना फायदा तो उस आरफ को फंसाने के बाद भी नहीं मिला था जितना कि उसकी औलाद के मरने के बाद मिल रहा है। एक पल के लिए झलक के मरने की खबर सुनकर नैना के दिल में हल्की सी चुभन जरूर हुई थी। आखिरकार झलक उसी के पेट से पैदा हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये एहसास उसे भी था। शायद यही वजह थी कि उसने आज तक झलक की जान लेने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिलहाल उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं में अपनी बेटी को पूरी तरह डुबो दिया था और अब वो पूरी तरह से आकांक्षा की खुशी में शामिल हो गई थी। तभी आकांक्षा खुशी से मुस्कुराते हुए बोली थी, देखना माँ, बहुत जल्द उर्वशी खुराना खुद ब खुद अपने पोते का रिश्ता यहाँ लेकर आएंगी, और इस बार हमें उनसे शादी की डेट की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद शादी की डेट फिक्स करेंगी। ये सुनकर दोनों के चेहरे पूरी तरह से खुशी से खिल उठे थे, क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह से लॉटरी लग चुकी थी। एक तरफ नैना ओबेरॉय पॉलिटिक्स में आ रही थी, जिसकी वजह से उनका मान सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ने वाला था, और वहीं अगर उनकी बेटी आकांक्षा ओबेरॉय सिद्धार्थ खुराना की बीवी बन जाती है तो उनसे ज़्यादा ताकतवर शायद ही कोई होता। इसी वजह से उन सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी ईशान ने नैना को देखते हुए पूछा था, वैभव कहाँ चला गया, वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? दरअसल उस हादसे के बाद जब वैभव ने देखा कि उसकी माँ ने भी आकांक्षा को कुछ नहीं कहा बल्कि उल्टा उसका साथ दे रही है, तो वैभव को काफ़ी बुरा लगा था। इन सब बातों से दूर जाने के लिए उसने कुछ दिनों के लिए यूरोप जाने का फैसला कर लिया था। उसने ये बात अपने मन में ही दबा ली थी, लेकिन उसकी माँ ने लोगों को बताया था कि वो कुछ दिन चिल आउट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यूरोप गया है। ये सुनकर ईशान मुस्कुराते हुए बोला था, कोई बात नहीं, जैसे ही वो वापस आएगा उसे खुशखबरी मिलेगी जो उसकी थोड़ी बहुत नाराज़गी को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना सीधे अपने ऑफिस से अपने पुराने अपार्टमेंट में चला गया था जहां वो पहले रहा करता था। उसने अब खुराना मेंशन जाना बंद कर दिया था। दादी को उसने फ़ोन पर इसकी जानकारी दे दी थी। ये सुनकर दादी को काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि अब तक वे सब बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे थे और उन्हें सिद्धार्थ की आदत हो चुकी थी। उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे उन्होंने सीधा आकांक्षा को फ़ोन मिला दिया था। आकांक्षा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था और सिद्धार्थ ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया था वो सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर दादी को बता दी थी। कहीं ना कहीं दादी के दिल के एक कोने में हल्की सी खुशी भी महसूस हुई थी। उन्हें लगा कि हो सकता है झलक के जाने के बाद सिद्धार्थ को अकेलेपन का एहसास हो रहा हो और शायद इसी वजह से वो आकांक्षा के करीब आ रहा हो। आखिरकार सिद्धार्थ झलक से प्यार भी करने लगा था। इसी सोच के साथ दादी मुस्कुराते हुए बोली थी, बेटा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हर रोज उससे मिलने जाया करोगी? ये वही बात थी जो आकांक्षा चाहती थी। उसने तुरंत हामी भर दी थी। वहीं रणविजय जो पास में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, सिद्धार्थ का कॉल और दादी का आकांक्षा से किया गया फ़ोन सब कुछ सुन चुका था। उसने मन ही मन कहा था, तो मिस्टर सिद्धार्थ खुराना अपने खोए हुए प्यार को अब आकांक्षा के चेहरे में तलाश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरे रहते हुए तुम्हें अब ये सुख भी नहीं मिलेगा। यही सोचते हुए रणविजय ने जल्दी ही अपने कुछ आदमियों को आकांक्षा के पीछे लगा दिया था ताकि उसकी हर एक जानकारी उसे मिलती रहे। आज से पहले रणविजय ने कभी आकांक्षा पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब दादी उसे इतना इम्पोर्टेंस दे रही थी तो उसे लगने लगा कि शायद अब वक्त आ चुका है दादी को और सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का। रणविजय मन ही मन सोच रहा था, लगता है मिस्टर खुराना को अब एहसास हो चुका है कि अगर उसका असली प्यार नहीं मिला तो प्यार की जैसी हमशक्ल ही सही। यही सोचकर शायद वो आकांक्षा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं रणविजय गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर आरव स्नेहा के साथ बैठे हुए थे। साथ ही साथ सौरभ जी भी मुस्कुराते हुए आरव के पास आए थे और बोले थे, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी जिंदगी एक तरफ से इस तरह बदल जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी झलक की वजह से। लेकिन तभी आरव ने स्नेहा को देखकर कहा था, स्नेहा तुम तो जानती हो ना कि मेरी जिंदगी में क्या से क्या हो गया है। तुम भी मेरी एक अच्छी दोस्त रही हो, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा और एक परिवार की तरह हम सब एक साथ रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अकादमी के सभी स्टूडेंट एक जगह जमा हो चुके थे। तब दादाजी सबके सामने खड़े हुए थे। सभी लोग मुस्कुराते हुए दादाजी को देख रहे थे, क्योंकि दादाजी की सबकी नजरों में खास इज्जत थी। आखिरकार दादाजी ने अपने बलबूते पर उन लोगों को इतना काबिल बनाया था कि वे आज वहां खड़े थे। और यहां से निकलने के बाद जिसको भी इस अकादमी का सर्टिफिकेट मिल जाता था, वो किसी भी फील्ड में जाए हर जगह कामयाब हुआ करता था। उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिलहाल दादाजी ने सब लोगों को देखा, लेकिन अभी तक झलक और अनामिका नहीं आई थी। तब दादाजी ने ट्रेनर की तरफ देखकर कहा था, दिवाकर जी क्या सभी लोग आ गए हैं, पता लगाओ। तभी दिवाकर जी ने इधर उधर देखा और बोले थे, सर वो दो नई लड़कियां अभी तक नहीं आई हैं। आपने उन्हें राउंड लगाने के लिए कहा था, शायद अभी तक वही कर रही हूँ। तभी वही खड़ी एक लड़की जिस पर झलक ने पहले ही हाथ उठाया था बोल पड़ी थी, अरे सर मुझे लगता है कि उन्हें वापस भेज देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ हासिल कर पाएंगी। जो नॉर्मल अकादमी का एक चक्कर नहीं लगा पा रही है, वे बाकी की ट्रेनिंग यहाँ कैसे लेंगी। तभी एक और लड़की मायरा उसका साथ देते हुए बोली थी, हाँ हाँ सर हमें भी यही लगता है। और गुरुजी वे किसी अमीर परिवार की बेटियां हैं, उनमें कहाँ दम होगा ये स्किल सीखने का। ये सुनकर दादाजी को काफी गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखते हुए कहा था, आप लोग उनके बारे में सोचना छोड़िए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। गुरुजी की बात सुनकर मायरा इधर उधर देखने लगी थी। वहीं दिवाकर जी ने अब सब बच्चों की तरफ देखते हुए कहा था, देखो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ किसी को अमीर या गरीब होने के आधार पर जज नहीं किया जाता। इस अकादमी में सभी स्टूडेंट एकदम समान हैं।
इसलिए आप में से कोई भी किसी को किसी भी तरह से जज नहीं करेगा। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात। ये सुनते ही सभी एकदम से शांत हो गए थे। लेकिन तब तक अनामिका और झलक दोनों ही हाँफती हुई वहां पहुंच गई थीं। उन्होंने अपने सारे चक्कर पूरे कर लिए थे। अनामिका ने तुरंत ही एक तरफ जाकर पानी की बोतल उठाई और सीधा अपने होठों से लगाकर पानी पीने लगी थीं। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मेनिया।